यह सब केवल प्रस्तावों और प्रवचनों से मिलने वाला नहीं है। जिनकी दाढ़ में खून लग गया है या जिनका अहंकार आसमान छूने लगा है, वे सहज ही अपनी गतिविधियां बदलने वाले नहीं हैं। उन्हें संघर्षात्मक प्रक्रिया द्वारा इस बात के लिए विवश किया जाएगा कि वे टेढ़ापन छोड़ें और सीधे रास्ते चलें। 9. सत्याग्रह पर आधारित संघर्षात्मक आंदोलन। इसके लिए हमारे दिमाग में गांधी जी के सत्याग्रह, मजदूरों के घिराव, चीनी कम्युनिस्टों की सांस्कृतिक क्रांति के कड़ुए मीठे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी समग्र योजना है जिससे अराजकता भी न फैले और अवांछनीय तत्वों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। उसके लिए जहां स्थानीय, व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्षों के क्रम चलेंगे, वहां स्वयंसेवकों की एक विशाल युगसेना का गठन भी करना पड़ेगा, जो बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करके अनौचित्य से करारी टक्कर ले सके। भावी महाभारत इसी प्रकार का होगा। वह सेनाओं से नहीं, महामानवों, लोकसेवियों और युग निर्माताओं द्वारा लड़ा जाएगा। सतयुग लाने से पूर्व ऐसा महाभारत अनिवार्य है। अवतारों की श्रृंखला सृजन के साथ साथ संघर्ष की योजना भी सदा साथ लाई है। युग निर्माण की लाल मशाल का निष्कलंक अवतार अगले दिनों इसी भूमिका का संपादन करे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ -60, 61। 10. जागृत आत्माओं की भूमिका। जागृत आत्माएं अपने आंतरिक देवासुर संग्राम को देखें और उसके समाधान के लिए सद्विवेक से, सत्साहस से भगवान का आह्वान करें। यदि ऐसा हो सके तो इसी देव परिवार की असंख्य प्रतिभाएं युग देवता के चरणों में अपनी छोटी या बड़ी भावभरी आत्माहुति प्रस्तुत कर सकती हैं। पतन और पीड़ा के गर्त में पड़ी हुई मानवता ने इसी की आर्त पुकार की है। महाकाल ने इसी की मांग की है। जागृत आत्माओं में से हर एक की असाधारण भूमिका इस संदर्भ में हो सकती है। कठिनाई एक ही है, लोभ और मोह के रूप में अंतर्ज्योति को ग्रस लेने वाले राहु केतु के ग्रहण से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। जो इस देवासुर संग्राम में देव पक्ष का समर्थन करेंगे, उन्हीं के लिए देव मानवों की तरह युग परिवर्तन की बेला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकना संभव होगा। जागृत आत्माएं इस संदर्भ में अधिक गंभीर चिंतन और अधिक प्रखर साहस अपनाएं, जिससे जितना अनुदान बन पड़े वह उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करे। यही अपने युग की सबसे बड़ी मांग और यही अंतरात्मा की सबसे बड़ी पुकार है। अखंड ज्योति, जनवरी 1978, पृष्ठ -56, 57। 11. भावनाओं को सक्रियता में बदलने का समय। युग सृजन के पुण्य प्रयोजन की योजना बनाते रहने का समय बीत गया, अब तो करना ही करना शेष है। विचारणा को तत्परता में बदलने की घड़ी आ पहुंची। भावनाओं का परिपाक सक्रियता में होने की प्रतीक्षा की जा रही है। असमंजस में बहुत समय व्यतीत नहीं किया जाना चाहिए। लक्ष्य विशाल और विस्तृत है। जनमानस के परिष्कार के लिए प्रज्वलित ज्ञानयज्ञ के, विचार क्रांति के, लाल मशाल के टिमटिमाते रहने से काम नहीं चलेगा। उसके प्रकाश को प्रखर बनाने के लिए जिस तेल की आवश्यकता है, वह जागृत आत्माओं के भाव भरे त्याग बलिदान से ही निचोड़ा जा सकेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय संसार के समस्त उत्पादनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण उपार्जन है। इस कृषि कर्म में हमें शीत वर्षा की चिंता न करते हुए निष्ठावान कृषक की तरह लगना चाहिए। धरती पर स्वर्ग का अवतरण नया नंदन वन खड़ा करने के समान है। निष्ठावान माली की तरह हमारी कुशलता ऐसी होनी चाहिए जिससे सृष्टा के इस मुरझाए विश्व उद्यान में बसंती बहार ला सकने का श्रेय मिल सके। ऐसी सफलता लाने में खाद पानी जुटाने से ही काम नहीं चलता, उसमें माली को अपनी प्रतिभा भी गलानी खपानी पड़ती है। भूमि और पौधों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले किसान और माली की तरह ही हमें देवत्व के उद्भव और स्वर्ग के अवतरण में जागृत आत्माओं को अपनी श्रद्धा और क्षमता का समर्पण प्रस्तुत करना होगा। अखंड ज्योति, मार्च 1978, पृष्ठ -61। 12. बड़े कार्य वजनदार व्यक्तियों से ही संभव। राज क्रांति का काम साहस और शस्त्र बल से चल जाता है। आर्थिक क्रांति साधन और सूझबूझ के सहारे हो सकती है। यह भौतिक परिवर्तन है जिनके लिए भौतिक साधनों से काम चल जाता है। हमें बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति की त्रिवेणी का उद्गम खोजना और संगम बनाना है। इसके लिए चरित्र, श्रद्धा और प्रतिभा के धनी दधीची के वंशजों को ही आगे आना और मोर्चा संभालना है। भवन, पुल, कारखाने आदि को वास्तुशिल्पी अपनी शिक्षा के सहारे बनाने में सहज ही सफल होते रहते हैं। हमें नए व्यक्ति, नए समाज और नए युग का सृजन करना है। जागृत आत्माओं का भावभरा अनुदान ही यह प्रयोजन पूरा कर सकता है। जिनके पास भावना है ही नहीं, जो कृपणता के दलदल में एड़ी से चोटी तक फंसे पड़े हैं, उन दीन दयनीय लोगों से क्या याचना की जाए। कर्ण जैसे उदार व्यक्ति ही मरणासन स्थिति में अपने दांत उखाड़ कर देते रहे हैं, हरिश्चंद्रो ने ही अपने स्त्री बच्चे बेचे हैं। लोभग्रसितों को तो कामनाओं की पूर्ति कराने से ही फुर्सत नहीं, देने का प्रसंग आने पर तो उनका कलेजा ही बैठने लगेगा। 13. चाहिए प्रतिभावान सृजन सैनिक व्यक्ति, परिवार और समाज की अभिनव रचना के लिए न तो साधनों की आवश्यकता है और न परिस्थिति के अनुकूल होने की। उसके लिए ऐसी प्रखर प्रतिभाएं चाहिए जिनकी नसों में भावभरा ऋषि रक्त प्रवाहित होता हो। चतुरता की दृष्टि से कौवा सबसे सयाना माना जाता है। श्रीगाल की धूर्तता प्रख्यात है। मुर्दे खोद खाने में बिज्जू की कुशलता देखते ही बनती है। खजाने की रखवाली करने वाला सर्प लक्षाधीश होता है। भावनात्मक सृजन में तो दूसरी ही धातु से ढले औजारों की आवश्यकता है। आदर्शों के प्रति अटूट आस्था की भट्टी में ही ऐसी अष्टधातु तैयार होती है। आवश्यकता ऐसे ही व्यक्तित्वों की पड़ रही है जो अष्टधातु के ढले हैं। लोकसेवा का क्षेत्र बड़ा है, उसके कोटरों में ऐसे कितने ही छद्मवेशधारी वंचक लूट खसोट की घात लगाए बैठे रहते हैं, पर उनसे कुछ काम तो नहीं चलता। प्रकाश तो जलते दीपक से ही होता है। अखंड ज्योति, मार्च 1978, पृष्ठ -61, 62। 14. नेता नहीं सृजेता करेंगे युग सृजन। युग सृजन में छोटी बड़ी भूमिका जिन्हें निभानी है वे सभी सृजन सैनिक कहे जाएंगे। उनका प्रधान हथियार उनका अपना व्यक्तित्व है। यदि उसमें प्रखरता मौजूद होगी तो फिर प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक जो भी काम हाथ में लिए जाएंगे वे सभी सफल होंगे। व्यक्तित्वहीनों के लिए युग नेतृत्व का दुस्साहस करना उपहासास्पद है। रंगमंच पर लड़ाई के पैंतरे बदलना एक बात है और रणभूमि में भवानी को बिजली की तरह चमकाना दूसरी। अभिनेता के रूप में तो वक्ता नेता का कार्य कोई मस्खरा भी कर सकता है, किंतु प्रभावोत्पादक परिणाम उत्पन्न कर सकना तो मात्र साहसी शूरवीरों के लिए ही संभव हो सकता है। युग सृजन के लिए एकमात्र साधन उस पुण्य प्रयोजन को हाथ में लेने वाले प्रखर व्यक्तित्व ही हो सकते हैं। इन दिनों सर्वोपरि आवश्यकता उन्हीं की है। अखंड ज्योति, जुलाई 1978, पृष्ठ 60, 15। नवसृजन की दिशाधारा आत्मकल्याण और लोककल्याण की गंगा यमुना जहां भी मिलेगी वहां उस दिव्य संगम का एक ही रूप होगा। जन जागरण के लिए अंशदान, श्रमदान, समयदान करने का भाव भरा उत्साह। यह जब आतुर होता है तो हजार कठिनाइयां, विरोध, असहयोग रहने पर भी एकाकी चल की साहसिकता जगती है। इस अंतः प्रेरणा को कोई बाहरी शक्ति रोक नहीं सकती, बाहरी प्रलोभन झुका नहीं सकता। वाक चातुरी एवं मोह ममता भी उसे फुसला सकने में समर्थ नहीं हो सकती। धनुष से छूटा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकता है। जागृत आत्माएं युगांतरीय चेतना से अनुप्राणित होकर जब प्रज्ञावतार की सहचरी बनती हैं तो फिर उन्हें सोते जागते एक ही लक्ष्य अर्जुन की मछली की तरह दिखता है। जनमानस का परिष्कार ही अपने युग का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आस्थाओं का पुनर्जीवन यही है। ज्ञानयज्ञ एवं विचार क्रांति अभियान इसी प्रक्रिया का नाम है। इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है? अपनी स्थिति इस दिशा में कितनी तेजी से कितनी दूरी तक चल सकने की है, इसी का ताना बाना उनका मस्तिष्क बुनता है। चिंतन और मंथन से हर स्थिति का व्यक्ति अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुरूप काम ढूंढ निकालने में सफल हो सकता है। आस्थाओं का कल्पवृक्ष उपने के उपरांत उसके पल्लव और फल फूलों की संपदा इतनी बड़ी चढ़ी होगी कि उसके सहारे प्रस्तुत संकटों के निवारण में कोई अड़चन शेष न रहे। आस्थाओं का उन्नयन, चिंतन का परिष्कार, सत्प्रवृत्तियों का अवगाहन, यह दिखते तो तीन हैं, पर वस्तुतः एक ही तथ्य के तीन रूप हैं। सत्कर्म और सद्ज्ञान वस्तुतः सद्भावों का ही उत्पादन है। यही है जागृत आत्माओं के माध्यम से प्रज्ञावतार द्वारा कराया जाने वाला महाप्रयास। हर जागृत आत्मा को अगले दिनों अपनी समस्त तत्परता और तन्मयता जनमानस के परिष्कार पर केंद्रीभूत करनी होगी। अखंड ज्योति, ऑगस्ट 1979, पृष्ठ 38, 16। अंधश्रद्धाओं का समर्थन हानिकारक है। अंधश्रद्धाओं का समर्थन भी जोखिम भरा है। किसी के साथ अनगढ़, अध कचरे, अपरिपक्वों की मंडली हो तो वह उसे जनशक्ति समझने की भूल करता रहता है। किसकी श्रद्धा एवं आत्मीयता कितनी गहरी है, इसका पता चलाने का एक मापदंड यह भी है कि वे विसंगतियों के बीच भी स्थिर रह पाते हैं या नहीं। जो अफवाहों की फंक से उड़ सकते हैं वे वस्तुतः बहुत ही हल्के और उथले होते हैं। ऐसे लोगों का साथ किसी बड़े प्रयोजन के लिए कभी कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। उन्हें कभी भी कोई भी कुछ भी कहकर विचलित कर सकता है। ऐसे विवेकहीन लोगों की छटनी कर देने के लिए कुचक्रियों द्वारा लगाए गए आरोप या आक्रमण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। योद्धाओं की मंडली में शूरवीरों का स्तर ही काम आता है। शंकालु, अविश्वासी, काय प्रकृति के सैनिकों की संख्या भी पराजय का एक बड़ा कारण होती है। ऐसे मूर्मतियों को अनाज में से भूसा अलग कर देने की तरह यह आक्रमणकारिता बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। दुरभिसंधियों के प्रति जनाक्रोश उभरने से सहयोगियों का समर्थन और भी अधिक बढ़ जाता है। उस उभार से सुधारात्मक आंदोलनों का पक्ष सबल ही होता है। कुसमय पर ही अपने पराये की परीक्षा होती है। इस कार्य को आत्ताई जितनी अच्छी तरह संपन्न करते हैं उतना कोई और नहीं। अस्थिर मति और प्रकृति के साथियों से पीछा छूट जाना और विवेकवानों का समर्थन सहयोग बना जिन प्रतिरोधों के कारण संभव होता है वह आक्रमणों की उत्तेजना उत्पन्न हुए बिना संभव ही नहीं होता। अखंड ज्योति अगस्त 1979 पृष्ठ -53, 54, 17। अभियान की व्यापकता एक ओर विनाश की विभीषिकाएं अपना गर्जन तर्जन करती हैं, दूसरी ओर सृजन की शक्तियां सुरक्षा एवं सृजन के प्रयत्नों में निरत हैं। इन परिस्थितियों में प्रत्येक जागरूक का कर्तव्य है कि वह पेट प्रजनन के पशु प्रयोजनों में निरत न रहे वरन यह सोचे कि क्या युग समस्याओं के समाधान में उसका कुछ योगदान हो सकता है। ध्वंस को निरस्त और सृजन को समर्थ बनाने के लिए इस विश्व संकट की घड़ी में अपना विशिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व समझना ही दूरदर्शियों के लिए उपयुक्त है। युग चुनौती इसी के लिए झकझोरती है और युग साधकों को अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की प्रेरणा उन सभी को देती है जिनमें अदृश्य को देखने और तथ्य को समझने की क्षमता विद्यमान है। अखंड ज्योति सितंबर 1979 पृष्ठ 35, 18। विचार क्रांति हेतु सद्भाव संपन्न मनीषा भी आवश्यक। विचार क्रांति अभियान किसी सामाजिक कुरीति सांप्रदायिक प्रथा मान्यता जैसी छोटी परिधि तक सीमित नहीं है। ऐसा होता तो उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले थोड़े से सुधारकों से भी काम चल सकता था, पर बात गहरी भी विस्तृत भी और साथ ही अति महत्वपूर्ण भी है। इससे भी बड़ी एवं विचित्र कठिनाई यह है कि उसे वीर बलिदानी भी नहीं कर सकते। इसके लिए सद्भाव संपन्न मनीषा की आवश्यकता पड़ेगी। अकेली मनीषा तो सहज उपलब्ध है, उसे पैसा देकर कहीं भी खरीदा जा सकता है और उचित अनुचित कुछ भी कराया जा सकता है। मिशन के लिए इसे प्रयुक्त करना तो गरिमा के प्रतिकूल है ही, प्राप्त करना तक कठिन है। खरीदी हुई मनीषा श्रद्धा रहित होने पर अभीष्ट प्रयोजन में गहराई तक उतर भी न सकेगी। ऐसी लंगड़ी लूली कानी कुबड़ी भीड़ किसी प्रकार किसी हद तक चल भी पड़ी तो वह निर्जीव होने के कारण वांछित प्रयोजन सिद्ध करने में निरर्थक एवं असफल ही सिद्ध होगी। अखंड ज्योति दिसंबर 1979 पृष्ठ -40, 19। चाहिए परिष्कृत प्रतिभा। बुद्धिमान मनुष्य आमतौर से धूर्त होते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवियों पर आज दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि इस विशिष्टता ने उन्हें चतुर कुशल प्रवीण तो बहुत बनाया, पर आदर्शों के निर्वाह में वे एक प्रकार से असमर्थ ही बने रहे। लेखक कवि वक्ता वकील नेता कलाकार वर्ग के बुद्धिवादी संख्या में थोड़े ही होते हैं, पर यदि उनकी प्रतिभा सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लग सकी होती तो उसका प्रभाव परिणाम निश्चितत भविष्य निर्धारण की दृष्टि से अत्यंत श्रेयस्कर रहा होता, पर स्थिति निराशाजनक है। सच तो यह है कि बुद्धिमत्ता ने समाज को जितना लाभ दिया है उससे कहीं अधिक हानि पहुंचाई है। चर्चा बुद्धि का महत्व घटाने की नहीं भाव संवेदनाओं को उभारने की हो रही है। यह भक्ति तत्व का पुनर्जीवन पुनर्जागरण है, अमृत इसी को कहते हैं। मस्तिष्क में बुद्धि बढ़े यह प्रयत्न दूसरे लोग कर रहे हैं। हमें चिंतन की उत्कृष्टता और अंतःकरण की भावश्रद्धा के संवर्धन में लगना है। अखंड ज्योति दिसंबर 1979 पृष्ठ 40, 20। प्रतिभाएं विभिन्न मोर्चों पर लगे। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों से सोचने की नई पद्धति प्रदान कर सकें। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु मीरा सूर कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सके जैसे सपेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसे को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सके। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो गांधी रूसो और कार्ल मार्क्स लेनिन की तरह अपने संपर्क के प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सके जिसकी पहले कभी भी आशा नहीं की गई थी। भावनाशीलों का क्या कहना, संत सज्जनों ने न जाने कितनों को अपने संपर्क से लोहे जैसे लोगों को पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे, हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह विनोबा के भूदानियों की तरह बुद्ध के परिव्राजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार कर दिया। प्रज्ञापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। अखंड ज्योति अप्रैल 1985 पृष्ठ 61, 21। सफलता का आधार संकल्प एवं प्रचंड मनोबल। कितने ही महान आंदोलन संसार में चले और व्यापक बने हैं, इनके मूल में एक दो व्यक्तियों का ही पराक्रम काम करता रहा है, जो अपनी उड़ाए आंधी के साथ अनेक को आसमान तक उड़ा ले गए। वे न तो महाबली योद्धा थे और न साधन संपन्न करोड़पति। गांधी ने जो आंधी चलाए, उसके साथ लाखों पत्ते और तिनके जैसी हस्ती वाले गगनचुंबी भूमिकाएं निभाने लगे। ऐसे आंदोलन समय समय पर अपने देश और विदेशों में उठते रहे और व्यापक बनते रहे हैं। इनके मूल में एक दो मनस्वी लोगों के संकल्प और प्रयत्न ही काम करते रहे हैं। इसीलिए संसार के मनुष्यों में सबसे बड़ा बल मनोबल ही माना गया है। संकल्प और निश्चय तो कितने ही व्यक्ति करते हैं, पर उन पर टिके रहना और अंत तक निर्वाह करना हर किसी का काम नहीं। विरोध अवरोध सामने आने पर कितने ही हिम्मत हार बैठते हैं और किसी बहाने पीछे लौट पड़ते हैं, पर जोहर परिस्थिति से लोहा लेते हुए अपने पैरों अपना रास्ता बनाने और अपने हाथों अपनी नाव खेकर उस पार तक पहुंचते हैं, ऐसे मनस्वी बिरले ही होते हैं। मनोबली ऐसे साहसी का नाम है जो सोच समझकर कदम उठाता और उसे प्राणपण से पूरा करता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1987, पृष्ठ 22। जागृत आत्माओं को युग निमंत्रण यही है। इन दिनों अनंत अंतरिक्ष में गूंजने वाले पांचजन्य की प्रतिध्वनि जो सुन सके सुने, जो उसका अनुसरण कर सके करें। श्रेय सौभाग्य और अवसाद पश्चाताप में से एक को चुनने के लिए हमसे से हर कोई पूर्ण स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का उपयोग इन्हीं दिनों करना होगा। अखंड ज्योति, सितंबर 1988, पृष्ठ 61। 4. वेदना समझें, भूल सुधारें। 1. विचारों से जुड़े रहें। खेद की बात है कि गायत्री परिवार का एक विशाल संगठन बना था, पर उसके सदस्यों को अखंड ज्योति पढ़ते रहने का महत्व हम न समझा सके। फलस्वरूप उनमें से अधिकांश लोग उस दिशा में चल सकने की स्थिति में न आ सके जो हमारा लक्ष्य था। अब यह निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हीं को अपने परिवार का परिजन माना जा सकता है और उन्हीं से कुछ आशा रखी जा सकती है जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं, जो हमारी वाणी को सुनना नहीं चाहते, जिन्हें हमारे विचारों और प्रेरणाओं की आवश्यकता नहीं, जो हमारे सुझावों और संदेशों का कोई मूल्य नहीं मानते। उन्हें परिजन कहना हमारा एक भ्रम मात्र था जो अब पूरी तरह दूर कर लिया गया है। अपने परिचित लोगों की भारी भीड़ में से हम युग निर्माण जैसे महान कार्य में कुछ सहयोग की आशा उन्हीं से करते हैं जो कम से कम हमारे विचारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें पने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई 1962, पृष्ठ 48। 2. संस्कार जगाएं, अनुदान पाएं, अपने प्रियजनों को सुखी बनाने के लिए हर कुलपति प्रयत्न करता है। हम भी इसी दृष्टि से इन दिनों अपना प्रयत्न तीव्र कर रहे हैं। यदि कुछ ठोस लाभ दिए बिना विदा होना पड़ा तो अपने प्रिय परिवार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व पूरा न हो सकेगा और उसकी लज्जा एवं वेदना हमें देर तक कष्ट देती रहेगी। इस व्यथा से छुटकारा पाने के लिए वर्तमान छटनी पर बहुत जोर दे रहे हैं, जो हमारी बात तो सुन सकते हैं पर बताए मार्ग पर चलने के लिए तनिक भी तैयार नहीं। उनके साथ उलझे रहने की अपेक्षा अब हमें ऐसे लोगों को साथ रखना है जो कुछ काम कर सकने लायक श्रद्धा और आत्मीयता हमारे प्रति उत्पन्न कर चुके हैं। अधिक न सही तो कम से कम इतनी सेवा हम अपने इन प्रिय परिजनों की करेंगे ही कि उनके वर्तमान परिवार सुसंस्कृत बने और उनकी गोदी में ऐसी उच्च आत्माएं अवतरित हों जो उस परिवार को तथा हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता प्रदान कर सकें। अखंड ज्योति, अगस्त 1966, पृष्ठ 47। 3. नहीं चाहिए संख्या पूर्वक, जिनकी आस्था दुर्बल है उनके लिए तिल भर बोझ भी पर्वत जैसा भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों से किस प्रकार आशा करें कि वे हमारे प्रयोजन में दो चार कदम चलने का साथ देंगे जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता, सांस्कृतिक एवं भौतिक पुनरुत्थान, भावनात्मक नव निर्माण आज के युग की महानतम मांग है। प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए इन उत्तरदायित्वों से विमुख होना या इनकार कर सकना अशक्य है। हमें स्वयं इसी दिशा में जिस सत्ता ने बलपूर्वक लगाया है वह अन्य भावनाशील लोगों के अंतःकरण में भी वैसी ही प्रेरणा कर रही है और वे सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तियों की तरह इसके लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। पर जिन्हें यह सब कुछ व्यर्थ दिखता है, जिन्हें इतने महत्वपूर्ण कार्य में कोई आकर्षण, कोई उत्साह, कोई साहस उत्पन्न नहीं हो रहा है, उनके संबंध में हमें निराशा हो सकती है। अपनी तपश्चर्या और ईमानदारी में कहीं कोई कमी ही होगी जिसके कारण जिन व्यक्तियों के साथ पिछले ढेरों वर्षों से संबंध बनाया उनमें कोई आध्यात्मिक साहस उत्पन्न हो सका। वह भजन किस काम का जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्माण एवं परमार्थ के लिए उत्साह उत्पन्न हो। किन्हीं को हमने भजन में लगा भी दिया है पर उनमें भजन का प्रभाव बताने वाले उपरोक्त दो लक्षण उत्पन्न हुए हों तो हम कैसे माने कि उन्हें सार्थक भजन करने की प्रक्रिया समझाई जा सकी। हमारा परिवार संगठन तभी सफल कहा जा सकता था जब उसमें वे सम्मिलित व्यक्ति उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की कसौटी पर खरे सिद्ध होते चलते। अन्यथा संख्या वृद्धि की विडंबना से झूठा मन बहलाव करने से क्या कुछ बनेगा। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1966, पृष्ठ 47। 4. हमारी साधना की सार्थकता क्या रहेगी। हमारा परिवार यदि व्यक्तिगत संपर्क की परिधि तक ही सीमित रहा और हमारे मिशन के प्रति उसमें आवश्यक निष्ठा उत्पन्न न हुई, तो एक प्रकार से हमारे प्रयोजनों का मटियामेट हो जाएगा। भीड़ बढ़ा लेना और जनसंपर्क फैला लेना मिलनसारी या प्रतिभा का चमत्कार हो सकता है, पर उस समूह में कोई जीवट न रही तो बालू की दीवार की तरह उस भीड़ को बिखरने में भी देर न लगेगी, और यदि कहीं ऐसा हो गया तो हमारी जीवन साधना की सार्थकता क्या रह जाएगी। अखंड ज्योति, अगस्त 1970, पृष्ठ 55-56। 5. न स्वयं को भूलें, न भटकें। निस्संदेह अखंड ज्योति परिवार में असाधारण उच्च संस्कारों से संबंधित आत्माएं हैं। उन्हें बड़े प्रयास और ढूंढ खोज के साथ एकत्रित किया गया है। इन संस्कारवान आत्माओं की इस परिवर्तन वेला में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। उन्हें नल, नील, अगध और हनुमान की तरह, अर्जुन, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास की तरह ईश्वरीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर शौर्य, साहस और त्याग बलिदान का परिचय देना चाहिए था, पर यह देखते हुए दुख होता है कि जिन्होंने हमारे साथ किसी समय तप और त्याग की दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी, वे अब नर पशुओं की तरह वासना और तृष्णा में लिप्त होकर शोक संताप की जलन में जल रहे हैं, किंतु तथ्य और प्रयोजन की ओर ध्यान नहीं देते। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 6-7। 6. तो गुरुसत्ता को पीड़ा होगी। हमारे साथी सहचर, जो सभी हमारे दिन रात के सहचर थे, कदम से कदम मिलाकर चलते थे, अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए अपनी सतत साधना में संलग्न थे, महान लक्ष्य की पूर्ति ही जिनकी एकमात्र आकांक्षा थी, लोभ मोह के बंधनों को जिनने काफी ढीला कर लिया था, जिन पर हमें भारी हर्ष और गर्व था, वे अब न जाने किससे शापित होकर नरक में जा गिरे और अपनी पूर्व जन्मों की स्थिति, परिस्थिति एवं प्रवृत्ति को बुरी तरह भूल गए। जिसके जीवन दीप अपने आप में प्रकाशवान थे, दूसरों के प्रकाशार्थ थे, अब वे लगभग बुझ गए। बत्ती के अग्रभाग पर जहां दीप्तिमान ज्योति जलती रहती थी, वहां आप कालिमा का अवशेष मात्र चिन्हित है। उच्च आत्माएं जो अपने को प्रकाशवान कर चुकी और जिनके प्रकाश का लाभ सुदूर क्षेत्रों में व्याप्त होने की आशा थी, वे बुझ जाएं, तो यह एक बड़ी दुर्घटना एवं भयंकर सार्वजनिक हानि की बात है। लोभ मोह के जाल जंजाल में जकड़ा हुआ जड़ जीवन नर पशुओं के लिए क्षम्य हो सकता है। जिनकी मनुष्यता जाग गई उनके लिए वह स्तर ऐसे ही उपहासास्पद है जैसे कि कोई बड़ी आयु का व्यक्ति बालकों जैसे खिलौने से खेले, घुटनों के बल चले और वैसी ही बोली बोले। प्रबुद्ध आत्माएं धर्म और ब्रह्मज्ञान को वाचालता नहीं दिखाती फिरती, वे उन आदर्शों को जीवनक्रम में उतारती हैं। वेदांत जिनकी जीव तक सीमित रह गया, व्यवहारिक जीवन में न उतरा, समझना चाहिए वे प्रगति के पथ पर न बैठ सके, विडंबना के दलदल में फंस गए। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 35-7. भूल कहाँ हुई। अपना परिवार तो हमने इतना बड़ा इकट्ठा कर लिया, पर उन्हें कुछ मोटी बातें समझा सकने में सफल न हो सके। हम उनके मन पर यह छाप न छोड़ सके कि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की गतिविधियों को अपनाना किसी प्रकार भी घाटे का सौदा नहीं है। यह प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधारती है, दीर्घ जीवन प्रदान करती है, दाम्पत्य प्रेम में भारी उल्लास भर देती है, बच्चे सुसंस्कृत बनते हैं, पैसे की तंगी नहीं रहती, मनोविकारों और उद्वेगों में नहीं जलना पड़ता, यश मिलता है, सच्चे और सज्जन मित्र मिलते हैं और उनकी मित्रता निपती है, दूसरों का सहयोग मिलता है, प्रगति का पथ प्रशस्त होता है, असफलताएं क्षुब्ध नहीं करती, चित्त में प्रसन्नता उमड़ती रहती है, आत्मसंतोष मिलता है और ईश्वर के अनुग्रह एवं सान्निध्य का हर घड़ी अनुभव होता है। और भी असंख्य लाभ हैं। हानि केवल इतनी ही है कि अपनी मूल मान्यताओं, अंधपरंपराओं और बुरी आदतों से हाथ धोना पड़ता है। लोभ मोह की जलन और वासना, तृष्णा की उद्विग्नता भी कम हो जाती है, दुष्टता भरा अंधकार घट जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी हानि नहीं है। लाभ इतना अधिक है कि सामान्य मनुष्य महामानवों की श्रेणी में जा पहुंचता है और उपेक्षणीय व्यक्तित्व सभी के सिर आंखों पर जा विराजता है। यदि इतनी मोटी बात और अक्षरश तथ्यपूर्ण उस सच्चाई को हम परिजनों को समझा सके होते, तो उनकी तथाकथित आध्यात्मिकता पूजा पाठ और कथा वार्ता तक सीमित होकर न रह गई होती, उसे जीवन व्यवहार में भी स्थान मिला होता और उनका स्वरूप वैसा न रहता जैसा आज है। वे अपेक्षाकृत बहुत सुखी और संतुष्ट होते और समाज को उनके व्यक्तित्व से भारी प्रकाश एवं बल मिल रहा होता। ईश्वर जाने की एक, इस युग का अंधकार उतना सघन है, अथवा दो, परिजनों का विवेक एवं शौर्य मर गया, अथवा तीन, अपने समझाने वाली क्षमता इतनी न्यून है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों में से जो भी कारण हो अथवा तीनों ही कारण हो, उपाय तो करना ही होगा। परिजनों को मोह शोक में डूबे हुए नहीं छोड़ सकते, वे अपनी अच्छी स्थिति का गर्व करते रहें। हमारी दृष्टि में आत्मकल्याण की साधना और लोकमंगल की प्रवृत्ति से उदासीन व्यक्ति की आत्मिक स्थिति अति दयनीय है। अपने इन पूर्वजों स्वजनों के उद्धार के लिए हम भागीरथ तप करेंगे और इसी उर्वर क्षेत्र में हरितिमा उगाएंगे, जिससे सारा उपवन सुशोभित हो उठे। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 38-39। 8. अपनों को उबारने के प्रयास। हम बहुत भोले जरूर हैं, पर इतने मूर्ख नहीं जो वस्तु स्थिति को समझते न हों। आत्मकल्याण और लोकनिर्माण की सम्मिश्रित कार्य पद्धति को भी जीवन में कुछ स्थान देने की बात हम कहते हैं, और उसे यूं ही मजाक में उड़ा दिया जाता है तो हमें भारी कष्ट होता है। इसे हम किसी की मजबूरी नहीं मान सकते। इसमें विशुद्ध उपेक्षा, अनिम्नस्ता और अश्रद्धा छिपी हुई है। यह गलत है। किसी समय वे बहुत आगे बढ़े चढ़े व्यक्ति नगण्य से सामयिक कर्तव्य की ऐसी उपेक्षा करें, हमें यह बहुत कष्टकारक लगता है। लगभग वैसा ही अनुभव होता है जैसा भागीरथ को अपने पूर्वजों की दयनीय स्थिति के बारे में होता था। कोई घी से रोटी खाता है या रेशमी कपड़ा पहनता है, यह देखकर हम उसे प्रसन्नचित नहीं मान सकते। आत्मिक दृष्टि से जो दरिद्र है, उसे असंख्य प्रकार की जलन जलाती रहेगी और वह नरक का भी अनुभव करता रहेगा। इस स्थिति में हम अपने स्वजनों को नहीं रहने दे सकते। हम उन्हें प्यार करते हैं, मित्र मानते हैं, इसलिए हमें अथक प्रयत्न करना होगा कि उन्हें ऊंचा उठाएं और समुन्नत करें। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 39-9। जो हो, हम एकरस एकनिष्ठ भाव से अपने मार्ग पर चलते हुए लंबी मंजिल पूरी कर चुके। विराम का अवसर आया तो यह उत्कंठा तीव्र हो चली कि हमारा परिवार घटिया स्तर का जीवन यापन करने का कलंक न उड़े रहे। प्रकारांतर से यह लांछन अपने ऊपर भी आता है। हम किस बूते पर अपना सिर गर्व से ऊंचा कर सकेंगे और किस मुख से यह कह सकेंगे कि अपने पीछे कुछ ऐसा छोका आए जिसे देखकर लोग उसके संचालक का अनुमान लगा सकें। ईश्वर की महान कृतियों को देखकर ही उसकी गरिमा का अनुमान लगाया जाता है। हमारा कर्तृत्व पोला था या ठोस, यह अनुमान उन लोगों की परख करके लगाया जाएगा जो हमारे श्रद्धालु एवं अनुयायी कहे जाते हैं। यदि वे वाचालता भर के प्रशंसक और दंडवत प्रणाम भर के श्रद्धालु रहे तो माना जाएगा कि सब कुछ पोला रहा। असलियत कर्म में सन्निहित है, वास्तविकता की परख क्रिया से होती है। यदि अपने परिवार की क्रियापद्धति का स्तर दूसरे अन्य नर पशुओं जैसा ही बना रहा तो हमें स्वयं अपने श्रम और विश्वास की निरर्थकता पर कष्ट होगा और लोगों की दृष्टि में उपहासास्पद बनना पड़ेगा। यह अवसर न आए इसलिए हम इन दिनों बहुत जोर देकर अपने उद्बोधन का स्वर तीखा करते चले जा रहे हैं और गतिविधियों में गर्मी ला रहे हैं, ताकि यदि कुछ सजीव लोग अपने साथियों में रहे हों तो आगे आएं और मृत मूर्छित अपनी मांद में जाकर चुपचाप पड़ जाएं। बात बहुत काम कुछ नहीं वाली विडंबना का तो अब अंत होना ही चाहिए। अखंड ज्योति, नवंबर 1969, पृष्ठ 62-10। गुरु सत्ता की आकांक्षा। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी अपेक्षा अधिक बड़ा आदमी बने। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसकी तुलना में अधिक सुखी रहे। हमारी आंतरिक भावना ही नहीं, चेष्टा भी यही है कि प्रज्ञा परिजनों को वह सुयोग मिले जिसके आधार पर वे महामानवों में गिने जा सकने की स्थिति तक पहुंचें और इतिहास के पृष्ठों पर अपने अंतिम चिन्ह छोड़ जाएं। एक चीज हमारे मन में है, उसे लेने वाला कोई हो, ऐसा जी ललचाता है। गाय थनों में दूध भरे फिरती है और उन्हें खाली करने के लिए बच्चे को रंभा रंभा कर ढूंढती और पुकारती है। हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो उच्च स्तरीय है और हमारे मार्गदर्शक ने समूची अनुकंपा समेटकर हमें दी है। उसे साथ लेकर नहीं मरना चाहते, वरन यह चाहते हैं कि उस पार्समणि का प्रियजन भी लाभ उठाएं जो हमें सौभाग्यवश मिली है। यह स्वाति बूंद की तरह बरसी और नगण्य सी सीप के पेट से बहुमूल्य मोती उगाने में समर्थ हुई है। अखंड ज्योति, जनवरी 1986, पृष्ठ 56-11। खोखलापन घातक है। अब ऐसा लगने लगा है कि जो विशाल भीड़ हमें चारों ओर से घेरे रही है, घेरे रहती है, उसके कम ही लोग उस स्तर के हैं जिन्हें हमारे प्रयासों के प्रति सच्ची सहानुभूति हो। अधिकांश लोग निहित स्वार्थ वाले हैं, जो अपने किसी प्रयोजन विशेष में सहायता प्राप्त करने के लिए हमारा उपयोग भर करना चाहते हैं। उनकी मनोभूमि उस स्तर तक विकसित नहीं हो सकी है कि वे हमारे जीवन उद्देश्य और क्रियाकलाप के पीछे काम करके दूरगामी प्रयोजन की उपयोगिता समझें और उसके लिए कुछ सहयोग अनुदान देने की हिम्मत करें। मनुष्य से सहायता प्राप्त करे, यह उचित है, पर केवल उतने तक ही सीमित बनकर रह जाए, यह बुरा है। भीड़ में क्या बना है? सोमवती अमावस्या को गंगा तट पर स्नान करने वाले और रामलीला में रावण वध के उत्सव में उपस्थित रहने वाले तथाकथित धार्मिक लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, पर उस जनसमूह के पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता। अतएव उस एकत्रीकरण का न व्यक्ति को लाभ मिलता है और न समाज को। वह जमघट विडंबना मात्र बनकर रह जाता है। सोचते हैं अपने साथ जुड़ा हुआ लाखों मनुष्यों का जनसमूह कहीं ऐसा ही खोखला न हो जो हमारे पीठ फेरते ही मुंह फेर ले, और जिस प्रयोजन को हम विश्वव्यापी बनाने के लिए अपने को तिल तिल गलाते रहे हैं, वे उसकी ओर मुड़ कभी न देखें। यदि ऐसा हुआ तो उन रंगीन सपनों का क्या होगा जो हमने बड़ी साध के साथ जीवन भर सजाए और संजोए हैं। अखंड ज्योति, अगस्त 1970, पृष्ठ 56। 12. सदुपयोग क्षमता संपन्न बने। आज धन, शिक्षा और साधनों की प्रचुर मात्रा में अभिवृद्धि हुई है। यदि उसका सदुपयोग संभव हुआ होता तो इतनी साधन संपन्न जनता स्वर्गीय सुख का आनंद ले रही होती, पर हो ठीक उल्टा रहा है। बढ़ती हुई संपदा विपत्ति का कारण ही बनती चली जा रही है और मानव जीवन का हर पक्ष, समाज का हर क्षेत्र इतना कलुषित हो रहा है कि घुटन में प्राण ही निकल रहे हैं। बाहर जितना ही सौंदर्य, भीतर उतनी ही कुरूपता। बाहर जितना वैभव, भीतर उतना ही। बाहर जितना ज्ञान, भीतर उतना ही अंधकार। इतना छद्म और इतना पाखंड शायद ही इतिहास में कभी आया हो। मानवीय महानता तो एक प्रकार से पलायन ही करती चली जा रही है। उसके स्थान पर जाल में फंसाने का ऐरी धंधा पनप रहा है। अब नैतिकता की, मानवता की कसौटी पर खरे सिद्ध होने वाले लोग दीपक लेकर ही तलाश किए जा सकते हैं। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 1, 13। प्रतिभाओं का अर्थ पतन ही मुख्य समस्या। आज बारीकी से देखा जाए तो राजतंत्र, धर्मतंत्र, समाजतंत्र, अर्थतंत्र, बुद्धितंत्र, कलातंत्र के क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाली प्रतिभाएं बुरी तरह अपने कर्तव्य से च्युत हो रही हैं। मुख से बकवास करते रहने का कोई मूल्य नहीं, प्रभाव पड़ता है आस्थाओं का और कृतियों का। वे छिपाए छिपती भी नहीं। यदि उनका स्वर अवांछनीय है तो मोटे तौर से कोई जाने या न जाने पर सूक्ष्म जगत में उनका भारी प्रभाव पड़ेगा। समर्थ प्रतिभाएं जहां अपने वर्चस्व से लोकमानस को अपने समान उत्कृष्ट बना सकती हैं, वहां उनकी निकृष्टता व्यापक रूप से अवांछनीयता का भी विस्तार कर सकती है। सर्वसाधारण की गतिविधियों में गिरावट आ जाना उतना चिंताजनक नहीं जितना प्रतिभाओं का नैतिक अध: पतन। आज यही विश्व संकट का प्रधान केंद्र बिंदु है। यही क्रम चलता रहा तो समस्त संसार के लिए आत्मघाती संकट कुछ ही दिनों में प्रस्तुत हो सकता है। अखंड ज्योति में 1972, पृष्ठ 30, 14। विनोबा जी कहते रहते थे कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उसके कार्यकर्ता निष्प्रिय और सच्चे सेवाभावी हों। वे न रहें या घट जाएं तो उन्हें विलासी प्रलोभन के सहारे रोके रहना व्यर्थ है। इस कसौटी पर अखंड ज्योति के प्रज्ञा परिजन अब तक निरंतर खरे उतरते रहे हैं और उनके सेवा कार्यों से संतुष्ट जनता उन्हें इतना सम्मान और सहयोग प्रदान करती है कि उनकी ब्राह्मणोचित निर्वाह आवश्यकताएं निरंतर पूरी होती रहें। साथ ही इस परमार्थी वर्ग की संख्या भी बढ़ती रहती है। आमतौर से सादगी का ब्राह्मण उचित जीवन लोगों को रास नहीं आता। सभी आलसी और विलासी रहना चाहते हैं। समय प्रभाव के सर्वथा विपरीत शक्ति केंद्र के साथ जुड़े हुए और निजी जीवन में बढ़ चक्र आदर्श उपस्थिति करने वाले सदगृहस्थ घर रहकर भी पुरातन काल के ब्राह्मणों जैसी जीवनचर्या अपनाते हैं। जो गड़बड़ करते हैं, मार्ग भ्रष्ट होते हैं, वे मार्ग से हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। जनसमुदाय ऐसे व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करता। वलोकेशना में उलझा व्यक्ति स्वयं अपने पैरों कुल्हाड़ी मारकर ग्लानी भरा जीवन जीता देखा जाता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1988, पृष्ठ 57। सबसे बड़ा भार हमारे ऊपर उन भावभरी सद्भावनाओं का है जिन्हें ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे ऊपर समय समय पर बरसाया है। सोच नहीं पाते कि इनका बदला कैसे चुकाया जाए। ऋण हमारे ऊपर बहुत है, जिसका असीम प्यार, जितनी आत्माओं का, कितनी ही आत्मीयता और सौजन्यता से हमने पाया है कि उसकी स्मृति से जहां एक बार रोम रोम पुलकित हो जाता है, वहां दूसरी ही क्षण यह सोचते हैं कि उनका बदला कैसे चुकाया जाए। प्रेम का प्रतिपादन भी तो दिया जाता है, लेकर के ही नहीं चला जाना चाहिए। जिससे पाया है उसे देना भी तो चाहिए। अपना नन्हा सा कलेवर, नन्हा सा दिल, नन्हा सा प्यार, किस किस का कितना प्रतिदान चुका सकता संभव होगा, यह विचार आते ही चित बहुत भारी और बहुत उदास हो जाता है। पूज्य गुरुदेव। 5. कसौटी पर खरे उतरें. 1. जरूरत है जीवित वालों की अब युग की रचना के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की ही आवश्यकता है जो वाचालता और प्रोपेगेंडा से दूर रहकर अपने जीवनों को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें और जिस तरह चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को सुगंधित कर देता है उसी प्रकार अपनी उत्कृष्टता से अपना समीपवर्ती वातावरण भी सुरभित कर सकें, अपने प्रकाश से अनेक को प्रकाशवान कर सकें. धर्म को आचरण में लाने के लिए निस्संदेह बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता होती है. कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सदुद्देश्य की ओर धैर्य और निष्ठापूर्वक बढ़ते चलना मनस्वी लोगों का काम है. ऊंचे और कायम मनुष्य 10-5 कदम चलकर ही लखड़ा जाते हैं. किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हैं, पर जैसे ही आलस्य प्रलोभन या कठिनाई का छोटा मोटा अवसर आया कि बालू की भीत की तरह औंधे मुंह गिर पड़ते हैं. आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाता है. ऐसे ओछे लोग अपने को न तो विकसित कर सकते हैं और न शांतिपूर्ण सज्जनता की जिंदगी ही जी सकते हैं. फिर इनसे युग निर्माण के उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र उत्पन्न करने की आशा कैसे की जाए? आदर्श व्यक्तित्वों के बिना दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा? गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों द्वारा यह कर्म यदि संभव होता तो वह अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका होता. जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनुभव करें और अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत करें. अखंड ज्योति, मार्च 1964, पृष्ठ 58. 2. ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जो सच्चा ईश्वर भक्त है वह अपना क्रूस मौत अपने कंधे पर रखकर मेरे पीछे पीछे आए. संसार के प्रायः सभी ईश्वर भक्तों, धर्मपरायणों, महामानवों और सत्पुरुषों को अपनी मनोभूमि को वास्तविकता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है. जो ईंट भट्टी में पकने से पहले इनकार कर दे वह पानी की बर्फ पड़ते ही गल जाने वाली निकम्मी चीज बनी रहेगी. मजबूती प्राप्त करने के लिए तो आग को अपनाना ही होगा. कच्चा लोहा भट्टियों में ही तो फौलाद बनता है. उबड़ खाबड़ ओछे और घिनौने स्वार्थी और तृष्णा वासना ग्रसित मनुष्य को आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग सदा ही अपनाना पड़ा है. इसका और कोई विकल्प न तो था और न आगे हो सकता है. अखंड ज्योति, सितंबर 1966, पृष्ठ 44. 3. अपने प्रिय परिजनों को आत्मिक प्रगति के पथ पर क्रमशः अग्रसर करना हमारा लक्ष्य रहा है. प्रगति की मंजिलें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ऊंची उठेगी वैसे वैसे ही शर्तें कड़ी होती चली जाएंगी. इसमें हमारा दोष नहीं है, यह अनादि परंपरा है. यदि एक दो माला जपने, हनुमान चालीसा, 10-5 आहुतियां दे लेने और थोड़ी सी पूजा पाठ का कर्मकांड निपटा लेने से आत्मिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त हो सकना संभव रहा होता तो हम अपने प्रियजनों को कदापि अधिकाधिक कष्टसाध्य वजन उठाने के लिए अनुरोध न करते. सस्ते में अधिक मूल्य की चीज मिल सकी होती तो हमसे अधिक और कोई प्रसन्न न हुआ होता. छुटपुट कर्मकांडों से ही आत्मा की प्राप्ति हो जाया करे तो कष्टसाध्य तपस्वी जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता ही क्या रह जाए. हमें पूरे विश्वास के साथ यह मान लेना चाहिए कि कीमती चीजें उचित मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, यश, धन आदि सांसारिक विभूतियां उपार्जित करने में लोगों को कितना घोर प्रयत्न और कितना साहस करना पड़ता है. फिर मानव जीवन की सर्वोपरि सार्थकता, सबसे बड़ा चढ़ा लाभ प्राप्त करने के लिए तनिक भी कठिनाई का सामना न करना पड़े ऐसा किसी भी प्रकार संभव नहीं. जो सस्ते कर्मकांडों के सहारे स्वर्ग मुक्ति एवं आत्मिक प्रगति की आशा लगाए बैठे रहते हैं उन्हें वज्र मूर्खों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझना चाहिए. अखंड ज्योति, सितंबर 1966, पृष्ठ 45. 4. उपयुक्त पात्रों की खोज योग परिवर्तन के उपयुक्त व्यक्तियों तथा परिस्थितियों का अभाव दूर हो सके. हमारे गुरुदेव ने हमारी भौतिक सुविधाओं को एक एक करके घटाया है और त्याग बलिदान की आग में अधिकाधिक तपाया है. हमारा अगला कदम आगे और भी अधिक कठोरतापूर्ण है. हमें अपने इस सौभाग्य पर अत्यधिक हर्ष और संतोष है क्योंकि हमें आत्मिक प्रगति की सुनिश्चित क्रम व्यवस्था का पता है. अनादिकाल से प्रत्येक आत्मिक स्तर पर ऊंचा उठने वाले को यही रीति नीति अपनानी पड़ी है. हमारे लिए भी और कोई नया मार्ग कैसे हो सकता था? प्रिय परिजनों के लिए या उनकी आत्मिक प्रगति के लिए इसी राजमार्ग पर चलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं. गांधी जिन्हें प्यार करते थे उन्हें जेल भिजवाते थे. बुद्ध जिन्हें प्यार करते थे उन्हें प्रव्रज्या देते थे. हम भी परिजनों को असुविधाएं ही दे सकते हैं. ऊंचा उठने के लिए और कोई सरल मार्ग यदि हमारे हाथ में रहा होता तो उसे बताते हुए प्रसन्नता ही अनुभव करते, पर सस्ते मूल्य पर ऊंची उपलब्धियां पाने का जब कोई विधान ईश्वर ने रखा ही नहीं तो हमें विवशता ही व्यक्त करनी पड़ती है। कुछ भी त्याग न करने पर भी आत्मलाभ हो सकने का झूठा आश्वासन दे सकना भी तो हमसे बन नहीं पड़ता। अखंड ज्योति, सितंबर 1966, पृष्ठ 46-5। हमें अपनी क्रिया पद्धति अगले दिनों समाप्त करनी है, अपने उत्तरदायित्व मजबूत कंधों पर सौंपने हैं। हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्र उत्कृष्ट व्यक्ति और उत्कृष्ट समाज की रचना है। इस प्रयोजन में जो लोग हमारा साथ दे सकते हों, वस्तुतः वे ही हमारे सच्चे आत्मीय हो सकते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 1966, पृष्ठ 46-6। जो खुद ही कुछ थोड़ा तप त्याग कर सकने में असमर्थ होंगे, वे आखिर दूसरों से कुछ त्याग बलिदान करने की बात किस मुंह से कह सकेंगे। अब गाल बजाने वालों का जमाना चला गया। बढ़ चढ़ कर बोलने और लिखने से जनता का मनोरंजन मात्र ही हो सकता है। प्रभाव उनका पड़ता है जो कुछ स्वयं करते हैं। जनमानस को त्याग बलिदान की प्रेरणा दे सकने की आवश्यकता केवल वे ही लोग पूरी कर सकेंगे जो पहले अपने जीवन में वैसा कुछ कर सकने की अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके होंगे। अखंड ज्योति, नवंबर 1966, पृष्ठ 47-7। कभी हमने पूर्व जन्मों के सत्संस्कार वालों और अपने साथी सहचरों को बड़े प्रयत्न पूर्वक ढंढा था और अखंड ज्योति परिवार की श्रृंखला में गूंथकर एक सुंदर गुलदस्ता तैयार किया था। मंशा थी इन्हें देवता के चरणों में चढ़ाएंगे, पर अब जब बारीकी से नजर डालते हैं कि कभी के अति सुरम्य पुष्प परिस्थितियों ने बुरी तरह विकृत कर दिए हम। वे अपनी कोमलता, शोभा और सुगंध तीनों ही खोकर बुरी तरह इतना मुरझा गए कि हिलाते डुलाते हैं तो भी सजीवता नहीं आती, उल्टी पनखुटियां झर जाती हैं। ऐसे पुष्पों को फेंकना तो नहीं है, क्योंकि मूल संस्कार जब तक विद्यमान है तब तक यह आशा भी है कि कभी समय आने पर इनका भी कुछ सदुपयोग संभव होगा, किसी औषधि में यह मुरझाए फूल भी कभी काम आएंगे। पर आज तो देव वेदी पर चढ़ाए जाने योग्य सुरभित पुष्पों की आवश्यकता है, सो उन्हीं की छांट करनी पड़ रही है। अभी आज तो सजीवता ही अभीष्ट है और वस्तुस्थिति की परख तो कहने सुनने, देखने मानने से नहीं वरन कसौटी पर कसने से ही होती है। सो परिवार की सजीवता निर्जीवता, श्रद्धा अश्रद्धा, आत्मीयता विडंबना के अंश पर रखने के लिए यह वर्तमान प्रक्रिया प्रस्तुत की है। अखंड ज्योति, अगस्त 1969, पृष्ठ 10-11-8। अगर चरण और कठिन होंगे, हम भाग्यशाली हैं जो सस्ते में निपट रहे हैं। असली काम और बड़े चढ़े त्याग बलिदान अगले लोगों को करने पड़ेंगे। अपने जिम्मे ज्ञानज्ञ का संविधादान और आज्याहुति होम मात्र प्रथम चरण आया है। आकाश छूने वाली लपटों में आहुतियां अगले लोग देंगे। हम प्रचार और प्रसार की नगण्य जैसी प्रक्रियाएं पूरी करके सस्ते में छूट रहे हैं। रचनात्मक और संघर्षात्मक अभियानों का बोझ तो अगले लोगों पर पड़ेगा। कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नवनिर्माण के इस महाभारत में भागीदार बने बिना बच नहीं सकता। इस स्तर के लोग कृपणता बरते तो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लड़ाई के मैदान से भाग खड़े होने वाले भगोड़े सैनिकों की जो दुर्दशा होती है, अपनी भी उससे कम ना होगी। चिरकाल बाद युग परिवर्तन की पुनरावृत्ति हो रही है। रिजर्व फोर्स के सैनिक मुद्दतों से मौज मजा करते रहे, कठिन प्रसंग सामने आया तो कतराने लगे, यह अनुचित है। परिजन एकांत में बैठकर अपनी वस्तुस्थिति पर विचार करें, वे अन्न कीट और भोग कीटों की पंक्ति में बैठने के लिए नहीं जन्मे हैं। उनके पास जो आध्यात्मिक संपदा है वह निष्प्रयोजन नहीं है। अब उसे अभीष्ट विनियोग में प्रयुक्त किए जाने का समय आ गया, सो उसके लिए अग्रसर होना ही चाहिए। अखंड ज्योति, सितंबर 1969, पृष्ठ 65-9। कितने व्यक्ति कहते रहते हैं कि हम आपके साथ हिमालय चलेंगे। उनसे यही कहना है कि वे आदर्शों के हिमालय पर उसी तरह चढ़ें जिस तरह हम जीवन भर चढ़ते रहे। तपश्चर्या का मार्ग अति कठिन है। हमारी हिमालय यात्रा कश्मीर की सैर नहीं है जिसका मजा लूटने हर कोई बिस्तर बांधकर चल दे। उसकी पात्रता उसी में हो सकती है जिसने आदर्शों के हिमालय पर चने की प्राथमिक पात्रता एकत्रित कर ली। सो हम अपने हर अनुयायी से अनुरोध करते रहे हैं और अब अधिक सजीव शब्दों में अनुरोध करते हैं कि वे बड़प्पन की आकांक्षा को बदलकर महानता की आराधना शुरू कर दें। यह युग परिवर्तन का शुभारंभ है जो हमारे परिजनों को तो आरंभ कर ही देना चाहिए। हम बदलेंगे युग बदलेगा का नारा हमें अपने व्यक्तिगत जीवन की विचार पद्धति और कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तुत करके सार्थक बनाना चाहिए। निस्संदेह अपने परिवार में इस प्रकार का बदलाव यदि आ जाए तो फिर कोई शक्ति युग परिवर्तन एवं नव निर्माण को सफल बनाने में बाधक न हो सकेगी। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ 56 10। 10. संगठित अभियानों को नष्ट करने के लिए कार्यकर्ताओं में फूट डालने, बदनाम करने, बल प्रयोग से आतंकित करने जैसे प्रयत्न सर्वत्र हुए हैं। ऐसा क्यों होता है, यह विचारणीय है। सुधारक पक्ष को अवरोधों का सामना करने पर उनकी हिम्मत टूट जाने, साधनों के अभाव से प्रगति क्रम शिथिल या समाप्त हो जाने जैसे प्रत्यक्ष खतरे तो हैं, किंतु परोक्ष रूप से इसके लाभ भी बहुत हैं। व्यक्ति की श्रद्धा एवं निष्ठा कितनी सच्ची और कितनी ऊंची है, इसका पता इसी कसौटी पर कसने से लगता है कि आदर्शों का निर्वाह कितनी कठिनाई सहन करने तक किया जाता रहा। अग्नि में तपाए जाने और कसौटी पर कसे जाने से कम में सोने के खरे खोटे होने का पता चलता ही नहीं। आदर्शों के लिए बलिदान से ही महामानवों की अंतः श्रद्धा परखी जाती है और उसी अनुपात से उनकी प्रामाणिकता को लोकमान्यता मिलती है। जिनको कोई कठिनाई नहीं सहनी पड़ी, ऐसे सस्ते नेता सदा संदेह और आशंका का विषय बने रहते हैं। श्रद्धा और सहायता किसी पर तभी बरसती है जब वह अपनी निष्ठा का प्रभाव प्रतिकूलताओं से टकरा कर प्रस्तुत करता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1979, पृष्ठ 53। 6. संगठन का स्वरूप। 1. औंधे सीधे लोगों का, भानुमती का कुनबा एक करके कोई संगठन बना लिया जाए तो ठहरता कहाँ है। जिन लोगों की दृष्टि में विचारों का कोई मूल्य या महत्व नहीं, वे किसी कार्य में देर तक कब ठहरने वाले हैं। जो लोग अखंड ज्योति नहीं मंगा सके, जो गायत्री साहित्य नहीं पढ़ सके, वे किसी समय बड़े भारी श्रद्धावान लगने वाले साधक भी आज सब कुछ छोड़ बैठे दिखते हैं। प्रेरणा का सूत्र टूट गया तथा अपना निज का कोई गहरा स्तर था नहीं, फिर उनके पैर भौतिक बाधाओं के झकझोरे में कब तक टिके रहते। इसलिए हम बारीकी से देखते रहते हैं कि सामने बैठा हुआ लंबी चौड़ी बातें बनाने वाला व्यक्ति हमारी विचारधारा के साथ अखंड ज्योति या साहित्य के माध्यम से बंधा है या नहीं। यदि वह इसकी उपेक्षा करता है तो हम समझ लेते हैं कि वह देर तक टिकने वाला नहीं है। जो हमारे विचारों को प्यार नहीं करते, उनका मूल्य नहीं समझते, वे शिष्टाचार में मीठे शब्द भले ही कहें, गुरुजी गुरुजी भले ही कहें, वस्तुतः हजारों मील दूर हैं। उनसे किसी बड़े काम की आशा नहीं रखी जा सकती। अखंड ज्योति, जनवरी 1962, पृष्ठ 43। 2. परिवार रचना की दो परंपराएं। परिवारों का गठन दो प्रकार का होता है, एक रक्त परिवार, दूसरा विचार परिवार। भावनाओं और आकांक्षाओं की एकता वाले भी एक कुटुंबी ही बन जाते हैं। रक्त के आधार पर बना हुआ वंश परिवार कहलाता है और भावनाओं के आधार पर बना संगठन ज्ञान परिवार या गुरु परिवार कहलाता है। संगठन तो पहले भी हमने किया था, पर हमारे विचारों को सबसे नियमित सुनने की शर्त न रहने से उनकी न तो जीवन दिशा बन सकी और न आस्था दृढ़ रह सकी। एक से विचारों के लोगों में स्वभावत प्रेमभाव पैदा होता है। एक दूसरे को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं और लौकिक जीवन में भी एक दूसरे की सहायता किसी न किसी प्रकार करते हैं। दूसरे लोग इस संघबद्धता से प्रभावित होते हैं। हम में से प्रत्येक को अपने वैयक्तिक जीवन का सर्वांगपूर्ण विकास करने के लिए अपने समीपवर्ती क्षेत्र में जितनों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकना संभव हो, उसके लिए शिथिल मन से नहीं, पूरे उत्साह से प्रयत्न करना चाहिए। युग परिवर्तन कार्यक्रम का आधार ही यह संगठन होगा। व्यापक अनैतिकता का अंत सत्पुरुषों की संगठन शक्ति के बिना और किसी उपाय से संभव नहीं। जितना जितना यह संगठन व्यापक और प्रबल होता जाएगा, उसी अनुपात से अपने कार्यक्रम बनते चलेंगे और एक एक कदम उठाते हुए उस लक्ष्य की पूर्णता तक पहुंच सकेंगे, जिसके ऊपर समस्त विश्व की, समस्त मानव जगत की सुख शांति निर्भर है। अखंड ज्योति, सितंबर 1962, पृष्ठ 45। 3. कोई संस्था संगठन न होते हुए भी हमारा यह भावना परिवार वह है जो संस्कारों और भावनाओं के प्रगाढ़ संबंधों के कारण परस्पर अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है। युग निर्माण की प्रथम भूमिका का संपादन करने के लिए हमें अपने इस परिवार में आवश्यक जीवन दिखाई पड़ता है। इसी से आरंभिक कार्यक्रम अपने घर से प्रारंभ हो रहा है। पीछे तो इसका विस्तार अपरिचित क्षेत्र में होना है। अगणित व्यक्ति, संगठन, देश और समूह इस योजना को अपने अपने ढंग से कार्यान्वित करेंगे। जिस प्रकार अध्यात्मवाद, साम्यवाद, भौतिकवाद आदि अनेकवाद कोई संस्था नहीं वरन विचारधारा एवं प्रेरणा होती है, व्यक्ति या संगठन इन्हें अपने अपने ढंग से कार्यान्वित करते हैं। इसी प्रकार युग निर्माण कार्यक्रम एक प्रकाश प्रवाह एवं प्रोत्साहन उत्पन्न करने वाला एक मार्गदर्शन बनकर विकसित होगा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1963, पृष्ठ 46। 4. सज्जनों का संगठन युग निर्माण योजना का लक्ष्य है। इसलिए संगठन से पूर्व हमें सज्जनता के लक्षणों से युक्त मनुष्यों को खोजना पड़ेगा। विचित्र स्वभाव के अवांछनीय गुण, कर्म, स्वभाव के व्यक्तियों का संगठन कुछ महत्व नहीं रखता, वरन उल्टी विकृति उत्पन्न करता है। दुष्ट लोगों का एक होना भी बुरा है। वे यदि कहीं एक होंगे तो वहां विध्वंसक या अनुपयुक्त वातावरण ही उत्पन्न करेंगे। इसलिए संगठन कार्य आरंभ करने से पूर्व हमें यह पूरा ध्यान रखना होगा कि सज्जनता प्रधान गुण कर्म स्वभाव के लोग ही अपने देव समाज में सम्मिलित हो सकें। प्रधान लोगों को पहले सुधारना चाहिए और जब वे काम के बन जाएं, तब उन्हें संगठन में सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक ओर सुधारक प्रयत्न जारी रहे और दूसरी ओर सुधरे हुओं को संगठन में सम्मिलित करने का। सेवाभावी उत्साही व्यक्तियों को स्वयंसेवक की तरह अपने आप को जन साधारण के कार्यों में सहयोग देने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और अपना समय देकर दूसरों के साथ संपर्क बनाने और उन्हें उपयुक्त प्रेरणा देते रहने का कार्य करना चाहिए। पदाधिकारी या नेता बनने की आकांक्षा बुरी है, इससे संगठन बढ़ते नहीं नष्ट होते हैं। इसलिए हमें केवल स्वयंसेवक बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। कोई पद मिले, नेता चुने जाएं, तब कुछ काम करेंगे। यह विचार मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए और भावनाशील व्यक्तियों को विचार क्रांति का क्षेत्र व्यापक बनाने एवं उसे संगठित करने में निरंतर लगे रहने को तत्पर होना चाहिए। अखंड ज्योति, दिसंबर 1963, पृष्ठ 54-6। अभी 10,000 कर्मयोगियों द्वारा 100,000 व्यक्तियों को विचार क्रांति के छात्रों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह संख्या भी कम संतोष गर्व और हर्ष की नहीं है। 100,000 छात्रों का यह विचार क्रांति विश्वविद्यालय आज की परिस्थितियों में अनुपम एवं अभिनव ही कहा जा सकता है। जीवन निर्माण की कला सिखाने, विवेक सम्मत विचारधारा अपनाने, नवनिर्माण के लिए त्याग बलिदान करने को कटिबद्ध करने के लिए ऐसा प्रेरणा केंद्र कोई था भी नहीं जो भारतीय जनता में मानसिक स्तर की अभिनव रचना कर सके। इस अभाव की पूर्ति के लिए अपना यह सत्प्रयत्न क्या महत्वपूर्ण नहीं है। आज यह प्रयास इतने विस्तृत देश को देखते हुए छोटा भले ही प्रतीत होता हो, पर कल उसके परिणाम दूरगामी होंगे। यह प्रशिक्षण 100,000 तक ही सीमित न रहेगा। आज के यह छात्र कल के युग निर्माण शिक्षक बनेंगे और उनके द्वारा अगली पीढ़ी की शिक्षा आरंभ होगी। यह क्रम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ेगा तो कुछ ही वर्षों में समस्त संसार को, समस्त मानव जाति को आदर्शवादिता की प्रेरणा से अनुप्राणित कर सकना संभव होगा। वर्तमान कठिनाइयों और बुराइयों के प्रति क्षोभ व्यक्त करते रहने, उन्हें कोसते रहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रतिकार और उपचार से ही कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। अखंड ज्योति परिवार की यह विचार क्रांति पद्धति ऐसी ही रचनात्मक प्रक्रिया है जिसका सुंदर परिणाम हम थोड़े ही दिनों में प्रत्यक्ष देखेंगे। अखंड ज्योति, ऑगस्ट 1965, पृष्ठ 45-46। सात भीड़ में से संस्कारवानों की खोज संख्या बल प्रदर्शन की दृष्टि से उपयोगी होती है, पर काम थोड़े से काम के व्यक्ति ही चलाया करते हैं। भीड़ का उत्साह क्षणिक होता है। जिनमें दृढ़ता और निष्ठा नहीं, वे आवेश में कुछ तूफान तो कर सकते हैं, पर देर तक किसी आदर्श पर ठहर नहीं सकते। ऐसे लोग नारे लगाने और प्रदर्शन करने के लिए काम चलाव प्रयोजन पूरा कर सकते हैं, पर किसी दीर्घकालीन पारमार्थिक प्रयोजन के लिए वे कुछ अधिक काम के सिद्ध नहीं हो सकते। कोई ठोस काम हमेशा निष्ठावान आदर्श व्यक्तियों के बलबूते पर ही चलता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1966, पृष्ठ 45-8। अखंड ज्योति परिवार का संगठन हमारे आजीवन प्रयत्न का फल है। सूक्ष्म दृष्टि से ढूंढ ढूंढ कर हमने देश भर में से संस्कारवान जागृत आत्माओं को प्रयत्न पूर्वक एकत्रित किया है। इसमें बहुत समय लगा है और बहुत श्रम। परिवार के अधिकांश सदस्य पूर्व जन्मों की भारी आध्यात्मिक संपदा से संपन्न हैं। उनका वर्तमान स्वरूप सामान्य भले ही दिखता हो, पर उनके अंतरंग में वे तत्व विद्यमान हैं कि थोड़े से प्रयत्न से उन्हें जगाया बढ़ाया और समुन्नत स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है। वाल्मीकि, अजामिल, अंगुलिमाल, सूरदास, तुलसीदास जैसे हेय जीवन बिताने वाले थोड़ा सा अवसर मिलने पर देखते देखते उच्च भूमिका में इसलिए जागृत हो उठे थे कि उनके पास पूर्व जन्मों की संचित संपत्ति बहुत थी। फिर जिनके हेय जीवन नहीं है, केवल मूर्छित मात्र हैं, उन्हें सजग और समुन्नत बनाया जा सकना कुछ अधिक कठिन नहीं है। जिस दिन व्यक्ति की अंतः भूमिका यह स्वीकार कर ले कि मानव जीवन का उद्देश्य पेट पालने और बच्चे उगाने से कुछ आगे बक भी है, यह अलभ्य अवसर किन्हीं महान प्रयोजन के लिए भगवान ने दिया है और थोड़ा दुस्साहस कर अपने स्वतंत्र विवेक का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी विचारणा और प्रक्रिया को बदलने में वैसा ही समर्थ हो सकता है जैसे कि ऐतिहासिक महापुरुष समर्थ हुए हैं। इतनी सी बात यदि गले उतर जाए तो आज बिल्कुल ही गया गुजरा दिखने वाला व्यक्ति कल अपनी रीति नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और जमीन पर रेंगने वाला आकाश में उड़ने लग सकता है। संस्कारवान व्यक्तियों के लिए यह आत्मा परिवर्तन अति सरल होता है। कोई छोट उनकी दिशा में आश्चर्यजनक मोड़ प्रस्तुत कर सकती है। अखंड ज्योति, नवंबर 1968, पृष्ठ 63। 9. संगठन बड़े सुदृढ़ बने. हर प्रबुद्ध परिजन को अपने दूसरे साथियों में उल्लास और उत्साह पैदा करना है. इसलिए जहां जितने अखंड ज्योति परिजन हैं, वहां उन्हें परस्पर संपर्क, सहयोग एवं घनिष्ठ भाव पैदा करना चाहिए, ताकि एक मजबूत श्रृंखला में आबद्ध होकर एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करने की प्रक्रिया ठीक तरह चलने लगे. अपने में से एक को भी बिछुने नहीं देना चाहिए, वरन प्रयत्न यह करना चाहिए कि विशालता की अभिवृद्धि हो और संख्या की दृष्टि से हम आपकी अपेक्षा दुने चौगुने हो जाएं. बड़ी सेना अपनी उत्कृष्टता एवं विशालता के आधार पर बड़े मोर्चे फतह करती है. अपना मोर्चा बहुत बड़ा है, अति व्यापक है. समस्त संसार अपना कार्यक्षेत्र है. जीवन की हर दिशा को प्रकाश देना और संसार की हर समस्या को सुलझाना है. इसलिए शक्ति में वृद्धि भी आवश्यक है. कहना न होगा कि संघ शक्ति इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है. हम जितने हैं उतने पर ही सीमित एवं संतुष्ट नहीं रह सकते हैं. मोर्चे की विशालता को देखते हुए परिवार का विस्तार होना भी अपेक्षित है. अखंड ज्योति, नवंबर 1968, पृष्ठ 65-10. भीड़ का संगठन बेकार है. मुर्दों का पहाड़ एक करने से तो बदबू ही फैलेगी. जिनके मन में कसक है, जो वस्तुस्थिति को समझ चुके हैं, उन्हीं का एक महान प्रयोजन के लिए एकत्रीकरण वास्तविक संगठन कहला सकता है. युग निर्माण परिवार संगठन में अब वे ही लोग लिए जा रहे हैं जो ज्ञानयज्ञ के लिए समयदान और अंशदान देने के लिए निष्ठा और तत्परता दिखाने लगे हैं. कर्मठ लोगों का संगठन बन जाने पर प्रचारात्मक अभियान को संतोषजनक स्तर तक पहुंचा देने पर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो अति महत्वपूर्ण कार्य इन दिनों शक्ति एवं परिस्थिति के अभाव में कर नहीं पा रहे हैं, वे आसानी से किए जा सकें. सृजनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रम की हमें अति विशाल परिमाण पर तैयारी करनी होगी. इन दिनों तो उनकी चर्चा मात्र करते हैं, बहुत जोर नहीं देते, क्योंकि जिस लोक समर्थन के लिए प्रचार और कार्य कर सकने के लिए जिस संगठन की आवश्यकता है, वे दोनों ही तत्व अपने हाथ में उतने नहीं हैं, जिससे कि अगले कार्यों को संतोषजनक स्थिति में चलाया जा सके. पर विश्वास है कि प्रचार और संगठन का पूर्वार्ध कुछ ही दिन में संतोषजनक स्तर तक पहुंच जाएगा. तब हम सृजन और संघर्ष का विशाल और निर्णायक अभियान आसानी से छेड़ सकेंगे और उसे सरलतापूर्वक सफल बना सकेंगे. अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ 60-10. सद्भावना संपन्न, सद्विचार वाले, सन्मार्गगामी सज्जनों की संख्या बढ़ाना, ऐसे गुण कर्म स्वभाव के लोगों को खोज करके उन्हें संगठित करना युग निर्माण योजना को मूर्तिमान बनाने के लिए आवश्यक है. आगे चलकर वे रचनात्मक कार्य आरंभ करने होंगे जिनके द्वारा मनुष्य में सोए हुए देवत्व का तीव्र गति से जागरण हो सके. वह त्याग, प्रेम, उदारता, संयम, सदाचार का जीवन जिए और इस धरती पर ही स्वर्ग अवतरित हुआ दृष्टिगोचर होने लगे. ऐसा सत्युग लाने के लिए आज की परिस्थितियों को बदलना होगा और चारों ओर फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों की असुरता के विरुद्ध हमें एक मजबूत मोर्चाबंदी करके देवासुर संग्राम खड़ा करना होगा. रीछ, बंदरों की ही सही पर सेना तो चाहिए ही. हमें भी अपना संगठन इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना ही पड़ेगा. अखंड ज्योति, 1963 दिसंबर, पृष्ठ 56-11. सृजन सेना का गठन करना है. अगला कार्यक्रम परिव्राजकों की सृजन सेना का गठन है. लेखनी वाणी के माध्यम से चल रहे विचार क्रांति अभियान को अब तक जो सफलता मिली है, उसका श्रेय भी जनसंपर्क के रूप में चलने वाले प्रयासों को ही दिया जा सकता है. भावी प्रगति का मध्य बिंदु भी इसी को माना जाएगा. बौद्धकालीन विचार क्रांति की व्यापकता और सफलता का श्रेय उस मिशन के लिए समर्पित परिव्राजकों को ही दिया जा सकता है. उन्हीं के प्रयास से भारत, एशिया और समस्त संसार को धर्मचक्र प्रवर्तन के महान अभियान से लाभ लेने का अवसर मिला था. ज्ञानयज्ञ की लाल मशाल भी उसी प्रक्रिया का उत्तरार्ध संपन्न कर रही है. अस्तु माध्यमों के संदर्भ में भी उसी प्रक्रिया का अनुकरण करना होगा. सुयोग्य परिव्राजकों का सुगठित परिवार ही घर घर में पहुंचकर जन जन के मन मन में युग चेतना का संचार कर सकेगा. जन जागरण का अलख जगाना प्राणवान परिव्राजकों के लिए ही संभव हो सकता है. अखंड ज्योति, अगस्त 1978, पृष्ठ 55-12. सभी जानते हैं कि संगठन में कितनी शक्ति होती है. तिनकों के मिलने से हाथी बांधने वाला मोटा रस्सा बनता है. धागे मिलने से मजबूत फर्श कालीन बनते हैं. सीकों का सम्मिलित स्वरूप बंधी बुहारी बनता है और सारे घर आंगन को झाड़ बुहार कर साफ करता है. मेले ठेलों में बिखरी भीड़ धक्के खाती और जेब कटाती है. पर वही जनसमुदाय जब सैनिकों के रूप में संगठित, प्रशिक्षित और कटिबद्ध हो जाता है, तो सुरक्षा और व्यवस्था की महती आवश्यकता पूरी करता है. नवनिर्माण अपने युग का अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है. इसे संपन्न करने के लिए भावनाशीलों का उद्देश्यपूर्ण गठन एक छत के नीचे होना चाहिए. प्रज्ञा परिवार इस बार ऐसी ही छोटी छोटी इकाइयों के रूप में अपनी संवेद स्थिति प्रकट करने जा रहा है। इसे बड़ा कदम माना जाना चाहिए और आशा की जानी चाहिए कि इस आधार पर व्यक्तित्वों की प्रखरता प्रकट होगी और समाज के नवनिर्माण की प्रक्रिया द्रुत गति से आगे बढ़ चलेगी। व्यक्तिगत चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आदर्शवादिता का समन्वय होना चाहिए। जन जन की प्रामाणिकता, प्रखरता निखरनी चाहिए। समाज में सहकारिता, उदारता और एकता समता की रीति नीति चलनी चाहिए। सर्वत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का माहौल बनना चाहिए। सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन समग्र तत्परता और तन्मयता के साथ होना चाहिए। व्यक्ति को उत्कृष्ट और समाज को समर्थ बनाना चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी 1987, पृष्ठ 67-13। बड़े संगठन संभालने में नहीं आते, उनमें अंगड़ों की भरमार रहने से टांग खिंचाई होती है और